पृष्ठ संख्या 5, अध्याय प्रथम, शीर्षक सूरदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व। हिंदी साहित्य के इतिहास में सत सहस्राधिक कवि हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से उनमें प्रसिद्धि तीन ही कवियों को प्राप्त हुई है, जिनमें हैं कबीर, सूर और तुलसी। शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही कोटि की हिंदी जनता के रोजमर्रा के व्यवहार में इन कवियों की उक्तियां उनकी जिह्वा पर विद्यमान रहती है। प्रसिद्ध गवैयों की मंडली से लेकर श्रमिक वर्ग की भजन मंडलियों तक इन्हीं कवियों के पद सुनने को मिलते हैं। अन्य भाषा भाषी प्रांतों में भी शास्त्रीय संगीत के समारोहों में भी कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के ही पद सुनाई देते हैं। इनके आलोक में शिव सिंह सेंगर की अग्रलिखित दोहा उद्धृत किया जा सकता है। सूर सूर तुलसी ससी उद्गण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूरदास के उपमान सूर में ही ऐसे अनेक गुण मौजूद हैं जो सूर काव्य की भी प्रेरणाएं विशेषताएं बन जाती हैं। सूर शब्द के प्रसंग में सूर्य प्रेरक है, प्राणप्रद है, जीवंत एवं जीवनदाता है तथा चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाने वाला है। इस संदर्भ में डॉक्टर गौतम का कथन सराहनीय प्रतीत होता है। सूर का काव्य भी भाव प्रधान होने के कारण प्रेरक है। लीला परक होने से जीवंत, भगवान कृष्ण के गाथा गायन एवं चरित्र चित्रण से जीवनप्रद तथा प्रकाशपूर्ण हृदय से निकलने के कारण परम पावन प्रकाश का प्रसार करने वाला है। निसंदेह सूर तुलसी दोनों ही आकाश के तारे हैं। श्रेष्ठता की कसौटी पर सूर से तुलसी अवश्य ही श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात है। शीर्षक व्यक्तित्व। हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं आत्मोद्घोष, आत्मश्लाघा, विकथा आदि से विराग तथा भक्ति संप्रदायों में तो इसका महत्व और भी अधिक है। यही कारण है कि हमारे देश के अधिकांश ख्याति प्राप्त कवियों, विद्वानों, मनीषियों, महापुरुषों आदि के विषय में बहुत विवाद है, क्योंकि उन लोगों ने विनम्रतावश अपने विषय में स्वयं कुछ लिखा ही नहीं। उनके व्यक्तिगत विषय में जानकारी के लिए बाह्य साक्ष्य पर भी बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है। उस समय आज के आधुनिक अर्थ में अपने यहाँ इतिहास लेखन का भी प्रचलन नहीं था। विदेशी मशनवी पद्धति की बात छोड़ दीजिए तो केवल रचनाओं में राजा के वक्त शासन काल में गुरु परंपरा की सूचना ही मिल पाती है। पृष्ठ संख्या 6। हिंदी के मध्यकालीन कवियों में सेनापति जैसे कुछ एक कवि अवश्य मिलते हैं जो आत्मविषयक सूचना भी दे देते हैं, अन्यथा संस्कृत काल से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक की अपनी परंपरा आत्मविषयक बातों को लेकर मौन ही रही है। तब सूरदास कैसे इसके अपवाद हो सकते हैं? उन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। उनके विषय में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए बाह्य साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। महात्मा सूरदास की जन्मतिथि के विषय में बहुत मतभेद है, क्योंकि अपने मत की स्थापना में बहुत कुछ अनुमान ही लगाया गया है। अतः इस विषय में अंतःसाक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। क, सूरदास की रचनाओं में एक साहित्य लहरी भी है, उसमें उनकी रचना का उल्लेख अधोलिखित रूप में हुआ है, जैसे मुनिपुनि रसन के रस लेख, दसन गौर नंद को लिखी सुवल सेवत पेख, नंद नंदन मास छेते हीन तृतीया बार, नंद नंदन जन्म ते है बान सुख अगार, तृतीय रीच सुकर्म जोग बिचारी सुर नवीन, नंद नंदन दास हित साहित्य लहरी कीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रथम पंक्ति का पाठ है मुनि सुनी रसन के रस लेखन। यह पद ठीक जान भी पड़ता है। यह उपलिखित पद का सारांश जानना आवश्यक है। मुनि बराबर साथ, सुनि बराबर शून्य, रसन के रस रसना बराबर जिह्वा अर्थात भोज्य पदार्थ के रस यानी क्षय, दसन गौरी नंद को बराबर पार्वती, नंदन गणेश का दात यानी एक, अंकानाम वामतो गति है यानी अंकों की गति उल्टी होती है के सिद्धांत के अनुसार इन संकेतिक अंकों यानी 7061 को उलटने पर हुआ 1607। सुबल संबल पेख बराबर सुबल सत संवर देखिए जानिए। ज्योतिष शास्त्र में माने 60 संत संवरों में सुबल किसी का नाम नहीं है। नंद नंदन बराबर कृष्ण यानी माधव। नंद नंदन मास बराबर वैशाख मास है। हीन तृतीया बराबर अक्षय तृतीय बराबर वैशाख शुक्ल तृतीया। वार बराबर रविवार आदि दिन। नंद नंदन जन्म ते बराबर श्री कृष्ण। वार से बाण बराबर बाण। कामदेव के पंच बाण यानी पांच। श्री कृष्ण जी की वार बुध माना जाता है, अतः बुध से अर्थात रविवार। तृतीय रीच बराबर तृतीय पक्ष ब्रैकेट में नक्षत्र अर्थात कृतिका नक्षत्र। सुकर्म जोग बराबर सुकर्मा नायक ब्रैकेट में 27 से सातवां ब्रैकेट बंद योग। इसका अर्थ यह हुआ कि साहित्य लहरी की रचना संवत 1607 विक्रमी वैशाख यानी शुक्ल अक्षय तृतीया रविवार को हुई। उस दिन नक्षत्र था कृतिका और योग सुकर्मा। मुनि पुनि रसन के रसलेख पाठ मानने से के शब्द निरर्थक पड़ जाता है। पुनि बराबर पुनः। यद्यपि यहाँ डॉक्टर मनमोहन गौतम ने रसन का अर्थ किया है रसन बराबर रस बराबर छ ब्रैकेट में जिसमें कोई रस न हो अर्थात शून्य। अर्थ हुआ सात। पुनः जीरो के छ एक यहाँ के की कोई संगति नहीं बैठती, अतः शुक्ल जी का ही पाठ अधिक ठीक प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या सात। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने मुनि पुनि रसन को रसलेख में रसन का अर्थ जिह्वा जिनकी संख्या शरीर में एक ही है करके संवत 1617 विक्रमी निकाला है। उनका कथन है कि उक्त संवत में प्रभाव नामक संवत्सर पड़ता है जो सुबल का समानार्थी हो सकता है। डॉक्टर मुंशी राज शर्मा रसन ब्रैकेट में रसना बराबर जिह्वा ब्रैकेट बंद के दो कार्यों रसास्वादन तथा शब्दोच्चार के आधार पर उसका अर्थ करते हैं दो। उनका कहना है कि 1627 विक्रमी में वृषभ नामक संवत्सर पड़ा था। वृषभ शक्तिशाली होता है, अतः उसके लिए सुबल शब्द रखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन दोनों विद्वानों द्वारा केवल रसन शब्द का स्वतंत्र संकेतांक क्रमशः एक और दो क्रम मानने पर कथित के निरर्थक हो जाता है, और इन्होंने जो सुबल का अर्थ बैठाया है वह तो केवल खींचतान है। पुणे के स्थान पर सुनी पाठ मानने से तथा रसन के रस का अर्थ छ करने से कोई शब्द निरर्थक नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मुनि सुनी रसन आदि का अर्थ से संवत 1607 विक्रमी निकलता है यही अधिक ठीक जचता है। उनकी रचना का सुर सरावली में उल्लिखित मिलता है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। शिव विधान तब करेऊं बहुत दिन तो पार नहीं लीन। इन पंक्तियों का अर्थ है गुरु कृपा से हरि लीला का यह दर्शन मुझे तो 67 वर्ष के प्रवीण यानी प्रौढ़ वय में हो रहा है। भगवान शंकर ने इसी उद्देश्य से विधि विधान पूर्वक बहुत दिनों तक तप किया, तब भी उन्होंने उस तप का पार नहीं पाया जिससे हरि लीला का दर्शन हो जाता। इसका स्पष्ट है कि सूरदास जी को 67 की अवस्था में हरि लीला का दर्शन हुआ, तब उन्होंने सुर सरावली की रचना की। उपर्युक्त तथ्य से यह सिद्ध हुआ कि साहित्य लहरी की रचना संपत 1607 विक्रमी में हुई थी, अर्थात 1548 ईस्वी में इसकी रचना की गई। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार यदि सरावली की रचना साहित्य लहरी से 2 वर्ष पूर्व हुई तो संवत 1605 में उनका वय यानी आयु 67 वर्ष रहा होगा। इस प्रकार उनका जन्म संवत 1538 विक्रमी माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रमी के आसपास मानते हैं जो उपर्युक्त विश्लेषण से अधिक निकट पड़ता है। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्म काल संवत 1540 के आसपास एवं मृत्यु संवत 1620 के आसपास ही अनुचित जान पड़ता है।